खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जो बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं वो आज सुबह मेरे साथ निकालें, दूसरा करंथियों 5 बाप उसकी 18वीं आयत, 19वीं आयत और 20वीं आयत, इस पर हम गौर करेंगे। हम कल वक्त की वजह से एलची की तफसील को देख नहीं सके, इसलिए आज हम एलची पर गौर करेंगे। पालूस रसूल इस बाप में कहता है कि हम जो कुछ करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है, और हम इस पर गौर करेंगे कि हमारी मसीही ज़िंदगी में हम जो कुछ भी करें इसलिए करें क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमें मजबूर करती है। सो पालूस रसूल यहाँ पर कहता है क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर करती है, इसलिए हम ये समझते हैं और ये बात वाकई ही तौर पर जानते हैं कि यीशु मसीह हम सब के लिए मुआ है, इसलिए हम अपने लिए ही नहीं जीते बल्कि किसके लिए जीते हैं, यीशु मसीह के लिए। सो आज हम एलची पर गौर करेंगे। 18वीं आयत में खुदा का बंदा पालूस कहता है, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकफीरों को उनके ज़िम्मे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। 20वीं आयत, पस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं, खुदा से मेल मिलाप कर लो। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस हिस्सा में आज हम एलची पर गौर करेंगे। एलची सफीर या नुमाइंदा। पहली बात, एलची अपना क्या कहते हैं कि अपनी मखसूसियत खुद नहीं करता, किसी भी मुल्क के एलची को देख लें उसे भेजा जाता है। यहाँ पर पालूस रसूल कहता है हम मसीह के एलची हैं, मसीह ने हमें क्या किया है, मुकर्र किया है। और पैगाम क्या है, पैगाम क्या है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मसीही एलची होते हुए, मसीही मुसाफिर होते हुए हम सब का ये क्या है, पैगाम है। इस दुनिया में ये पैगाम हमें देना है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि यीशु मसीह को उसने भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की ज़िंदगी पाए। पहली बात, एलची अपने आप को मुकर्र नहीं करता, उसका भेजने वाला उसे मुकर्र करता है। आप सबको, हम सबको मसीह में एलची कहा जाता है। हमारी जिम्मेदारी है पैगाम देना। दूसरी बात, एलची खुद अपनी मुआवनत नहीं करता, यानी अपनी मदद खुद नहीं करता बल्कि उसकी मदद किसकी तरफ से भेजी जाती है, उसके भेजने वाले की तरफ से। हमारी मदद कहाँ से आती है, मेरे साथ निकालें इफिसियों 1 बाप उसकी 3 आयत और फिलिपियों 4 बाप उसकी 19वीं आयत। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी मुआवनत, हमारी मदद हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है। खुदा हमारी मुआवनत में हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है। जैसे दुनियावी एलची को जब भेजा जाता है किसी मुल्क में तो गवर्नमेंट उसकी सारी क्या करती है, ज़रूरतों की क्या करती है, निगाबानी करती है, उसकी देखभाल करती है। इफिसियों 1 बाप उसकी 3 आयत में हमारी रूहानी ज़रूरियात खुदा की तरफ से है। और 1 बाप 3 आयत में हमें सबको याद होना चाहिए इस आयत को, लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हम आसमान से भेजे गए हैं इस ज़मीन पर क्या देकर, बरकत देकर। इस ज़मीन पर बरकत देकर भेजे गए हैं ताकि हमारी जो ज़िम्मेदारी है उसे पूरा करने वाले बने। इसी तरह फिलिपियों 4 बाप उसकी 19वीं आयत मेरे साथ देखें, वहाँ पर भी एलची की तमाम ज़रूरियात के बारे में बात की गई है। पालूस रसूल यहाँ पर कहता है कि मुझे खुदा ने मुकर्रर किया है, इसलिए मेरी तमाम ज़रूरियात का निगेबान भी वही है। सो एलची की ज़िंदगी में ये ख़ासुल ख़ास बात है कि उसका इंतज़ाम करने वाला कौन है, उसका भेजने वाला। फिलिपियों 4 बाप उसकी 19वीं आयत में पालूस कहता है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतजाज रफा करेगा। हर एक ज़रूरत मेरा खुदा हर तरह की दौलत, हर तरह की बरकत को जो जलाली बाप है वो मुहैया करेगा। सो इस बात की ये दलील या ज़मानत है, जब कभी खुदा किसी को मुकर्रर करता है तो उसका इंतज़ाम भी करता है। खुदा जब किसी को शादी के लिए कहता है कि शादी करो, तो खुदा इस बंदे में ये बात देखता है कि वो इस काबिल है कि अपने बेटी, अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपने बच्चों की क्या कर सके, देखभाल कर सके। सो यहाँ पर ये भेद हमें जानने को मिलता है कि एलची खुद अपनी ज़रूरियात मुहैया नहीं करता, उसका भेजने वाला उसका इंतज़ाम करता है। सो ये एलची में ख़ास बात है। तीसरी बात मेरे साथ देखें, फिलिपियों 3 बाप उसकी 20वीं आयत। एलची जिस मुल्क में भेजा जाता है वो उस मुल्क का नुमाइंदा या बशिंदा नहीं होता। एलची जब किसी मुल्क में भेजा जाता है तो वहाँ पर वो दूसरे मुल्क से भेजा जाता है ताकि बशिंदा बन के नुमाइंदगी करे। सो हम भी आसमान से भेजे गए हैं ताकि इस ज़मीन पर क्या करें, नुमाइंदगी करें, और हमें सलाहकारी के लिए क्या दी गई है, आसमानी हदायत दी गई है कि आसमानी हदायत के मुताबिक इस ज़मीन पर मसीह की एलची होते हुए ज़िंदगी बसर करें। सो फिलिपियों 3 बाप उसकी 20वीं आयत में पालूस रसूल कहता है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मनजी यानी खुदावंद यस्सु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। सो एलची होते हुए हमारा वतन कौन सा है, आसमान है, और वहाँ से हम यहाँ पर इसलिए भेजे गए हैं ताकि आसमानी शहर की क्या करें, नुमाइंदगी करें, आसमानी शहर के बारे में बताएं, और इसी इंतज़ार में हैं कि जिसने हमें भेजा है उसका इंतज़ार करें। सो एलची का ये ख़ासल ख़ास क्या है, ज़िंदगी का मकसद है कि उस मुल्क का वो बशिंदा नहीं जहां उसे तैनात किया जाता है। सो हम इस मुल्क के बशिंदे या ज़मीन के रहने वाले इसीलिए हैं क्योंकि हमें आसमान से भेजा गया है। हमारा हकीकी वतन आसमान है। इसलिए मेरे साथ एक और हवाला निकाले, 2 तिमोथियस 3:16। जब किसी मुल्क में एलची को भेजा जाता है तो उसको तैनात करने के साथ साथ क्या किया जाता है, उसके पास तहरीरी तौर पर असूल होते हैं, उसके पास वो किताब होती है जिसमें वो तमाम अहकाम, असूल और तरीके लिखे जाते हैं कि वो जाकर जिस भी शहर के मुल्क की अम्बेसी में बैठता है वो बयान करता है कि हमारे मुल्क में आने का ये तरीकाकार है। जैसे मैंने जब अमरीका में जाना था तो जाने से पहले उनका जो एलची था इस्लामाबाद अम्बेसी में बैठा हुआ, जिसे सफ़ीर भी कहते हैं और अम्बेसिडर भी कहते हैं, उसके पास एक किताब थी, उसने अपनी किताब में उन तमाम असूलों को देखा और जब मैं उस असूलों में पूरा उतरा तो उन्हें मुझे बताया कि इसमें गलती है, इसमें गलती नहीं है, ये बात करनी है और ये बात नहीं करनी, इस बात की कमी है और इस बात की तुम्हें ज़रूरत है। सो 2 तिमोथियस 3:16, हम ईमानदारों के लिए जैसे एलची के पास तहरीरी हदायत होती है वैसे ही हमारे पास बाइबल मुकद्दस है। एलची होते हुए हमारे लिए जो हदायत की किताब दी गई है वो है खुदा का अलाही मकाशफा, जिसके बारे में लिखा है 2 तिमोथियस 3:16। ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور صلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ ہمارے لیے یہ کتاب ہماری ہدایت کی وہ کتاب ہے جسے پاک کلام کہتے ہیں۔ ایلچی ہوتے ہوئے ہمیں زمین پر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچویں بات جو ایلچی میں پائی جاتی ہے، ایلچی اپنی بے عزتی یا توہین یا اپنے آپ کو برا بھلا کہنے طور پر اسے شخصی طور پر نہیں لیتا۔ ایلچی جب اس کی بے عزتی یا اسے برا بھلا کہا جاتا ہے تو وہ اسے شخصی طور پر نہیں لیتا کہ کسی نے اسے برا کہہ دیا تو اس نے کہا کہ جی میں نوکری چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے کسی نے برا بھلا کہہ دیا یا کوئی خطرے کا سامنا ہوا تو میں جی اپنا ذمہ داری چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سو اسی طرح اسے قبول کیا جائے یا اسے نہ کیا جائے، اس کا دار و مدار اس پر نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پر ہے۔ اسی لیے جب ہم بھی ستائے جاتے ہیں، ہم بھی ددکارے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے یسوع مسیح بھاسا، میری جاب ختم، تو جانتے تیرا کام جانے۔ سو مسیحی ایلچی ہوتے ہوئے ہمیں ایسا نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے، میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 19 آیت سے 21 آیت تک، کہ ایلچی بے عزتی یا توہین کو شخصی طور پر نہیں لیتا، اس کے قبول یا رد کیے جانے کا دار و مدار اس کی لیاقت پر نہیں بلکہ اس پر ہے جس نے اس کی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یوحنا کی انجیل 15 باب، یوحنا کی انجیل 15 باب اس کی 19 آیت، یہ ایلچی کے لیے بہت ہی اہم ہدایت ہے کہ جب وہ بے عزتی آ جائے تو یہ نہیں کہ وہ اسے کہے کہ اب میں اسے نہیں کر سکتا اور اپنی نوکری چھوڑ کر بھاگ جائے، بلکہ اس کا دار و مدار کیا ہے، اپنے بھیجنے والے کی نمائندگی کرنا۔ ذمہ داری کیا ہے، اس کی نمائندگی کرنا ہر حالات میں۔ جب لوگ مسیح سے نفرت کرتے تھے تو اسے تحقیر کرتے تھے، اس کی بے عزتی کرتے تھے، تو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ خدا میں تیرا منصوبہ پورا نہیں کر سکتا۔ تو مسیح نے کیا کہا تھا، 15 باب اس کی 19 آیت، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، جیسے بشندہ وہ ملک کا نہیں، وہاں سے نہیں بلکہ کسی اور ملک سے بھیجا گیا ہے، ہم بھی دنیا کے نہیں بلکہ آسمانی ہیں۔ سو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے جانے سے پہلے کیا کہتے ہیں، اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں تھی اسے یاد رکھو کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے، اگر انہوں نے میری باتوں پر عمل کیا تو تمہاری باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ سادہ سی بات، ایلچی کو یہ بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی بے عزتی کی جائے گی۔ یسوع مسیح سادہ لفظوں میں کہتا ہے، انہوں نے میری بے عزتی کی ہے تو تمہاری بھی کریں گے، جنہوں نے میری عزت کی ہے تمہاری بھی عزت کریں گے۔ سو مسیحی ایلچی یا مسیحی مسافر ہوتے ہوئے اس بات پر ہمیں اپنے ہاتھ کھڑے نہیں کرنے بلکہ قدم جمائے رکھنے ہیں۔ چھٹی بات، ایلچی کسی بھی ملک میں ذاتی نفع کے لیے داخل نہیں ہوتا۔ ایلچی کسی بھی ملک میں جب بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنا نفع نہیں بناتا، روپے پیسے کے لیے نہیں کہتا کہ جی مجھے زیادہ پیسے دے دو تو میں کام کروں گا یا اپنے اس طریقے کو بدل لینا۔ سو مسیحی ایلچی ہوتے ہوئے ہمیں بھی اس دنیا میں خداوند کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ہمیں خداوند سے وفادار رہنا، نہ کہ کسی اور بات سے۔ سو میرے ساتھ نکالے 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 15 آیت، 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 15 آیت، ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں خداوند کے لیے خدمت کے لیے موجود ہیں، خداوند کی خدمت کریں۔ 2 کرنتھیوں 5 باب اس کی 15 آیت کیا لکھا ہے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے موا جو جیتے ہیں آگے کو اپنے لیے نہ جئیں، جو جیتے ہیں اپنے کو आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि किसके लिए जिए, जिसने उसे जिंदा किया है। सो मेरे साथ एक और हवाला देख सकें तो देख सकते हैं, तो देखें रोमियो 14 बाब, रोमियो 14 बाप उसकी 8वीं आयत, 7वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है क्योंकि हम में से ना कोई अपने वास्ते जीता है ना कोई अपने वास्ते मरता है, और 8वीं आयत, अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं और अगर हम मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं, पस हम जिए या मरे खुदावंद ही के लिए। सो एलची का जो क्या है मतलब कि वो जिस मुल्क में जाता है जाती नफा के लिए नहीं, जाती मकसद के लिए नहीं, बल्कि अपने भेजने वाले के मकसद को पूरा करने के लिए। 7वीं बात, एलची किसी का शख्सी नुमाइंदा नहीं होता, एलची किसी का शख्सी नुमाइंदा नहीं होता। जैसे जी मैं लोटे वाले का नुमाइंदा हूँ जी, मैं साइकिल वाले का नुमाइंदा हूँ जी, जी मैं शेर का नुमाइंदा हूँ जी, मैं जी तीर का नुमाइंदा हूँ। सो वो किसी इंसान का नुमाइंदा नहीं होता बल्कि किसका नुमाइंदा होता है, मसीह खुदावन का। सो एलची जैसे अपने मुल्क का नुमाइंदा होता है और जो कुछ वो कहता है करता है उसका असर और उसका तमाम तरीका कार अपने भेजने वाले पर है। सो हमें मसीही एलची होते हुए इंसानी नुमाइंदे नहीं बनना बल्कि खुदाई नुमाइंदे बनना है। सो इसके लिए मेरे साथ आप हवाला देख सकते हैं यूहन्ना की इंजील 13 बाप उसकी 35वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 13 बाप उसकी 35वीं आयत, एलची किसी का शख्सी नुमाइंदा नहीं होता, वो जो कुछ भी कहता है या करता है उसका असर अपने भेजने वाले पर और उसके हुक्म पर होता है। सो यूहन्ना की इंजील 13 बाप उसकी 35वीं आयत में ये खुदावंद यीशु मसीह नुमाइंदगी के तौर पर कहता है कि जाकर मेरी नुमाइंदगी किस तरह करनी है। 13 बाप उसकी 35वीं आयत, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो खुदाई मोहब्बत है, जिसके बारे में हम सुन चुके हैं, अगापे लव जिसे कहते हैं यूनानी जबान में, अगापे बेमतलब की मोहब्बत, बेजर मोहब्बत, बगैर किसी कह सकते हैं कि उसके साथ किसी किस्म की मतलब की डोर जुड़ी हो, खुदाई मोहब्बत। सो पालूस रसूल इसे यूं कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं। यीशु मसीह से कहते हैं कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से जानोगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, इसी से हम जाने जाएंगे कि हम क्या हैं, एलची। सो एलची को क्या करने की ज़रूरत है, शख्सी अपने किसी भी शख्सी नुमाइंदे की नुमाइंदगी नहीं करनी बल्कि खुदावंद की नुमाइंदगी करनी है। और खुदा की नुमाइंदगी हम किस तरह कर सकते हैं जी, ये MPA साहब आपकी सड़कें बना देंगे, आपके घर में पानी लगवा देंगे, इसलिए वोट इसे दो, ऐसे नुमाइंदगी करते ना जी हम। खुदावंद यीशु पर ईमान लाओ, वो तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी देगा, अगर ईमान नहीं लाओगे तो मेरे भाई मेरी बहन दोजख में जाओगे। ये हमारा पैगाम है, ये हमारी नुमाइंदगी है यीशु मसीह के लिए। ये नहीं कि यीशु मसीह तुम्हारी सड़कें बनवा देगा, नहीं, यीशु मसीह तुम्हें ज़िंदगी देगा। यीशु मसीह ही में ज़िंदगी है, जिसने कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और 8वीं बात, एलची का जाविया निगाह यानी कि खिदमत का तरीकाकार उसके अपने असूल नहीं बल्कि उसके भेजने वाले पर है जो वफादार खुदा है। सो 8वीं बात एलची के लिए, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब देखें कि एलची का जाविया निगाह खिदमत है, उसका आइंदा वफादार और उसका अजर और उसकी खिदमत का जो हुक्म किसकी तरफ से है, उसके भेजने वाले की तरफ से। एलची को जब भेजा जाता है तो उसका जाविया हयात जो उसका खिदमत का तरीकाकार है वो क्या है, वफादारी। और इस आयत से आप सब वाकिफ़ हैं, मत्ती की इंजील 5 बाप उसकी 12 आयत, अगर किसी ने निकाली है तो वो बुलंद आवाज़ से पढ़ सकता है, वरना हम खुद देख सकते हैं कि 12वीं आयत में क्या लिखा है, खुशी करना, शादमान खुशी करना, नहाय शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। हम सताए जाएंगे, हम हकीर जाने जाएंगे, लेकिन हमें वफादार रहने की ज़रूरत है। वफादार रहेंगे तो अजर मिलेगा। हाल ही में शाम के मुल्क में तीन सफ़ीर थे जिनको कत्ल कर दिया गया, इसी वजह से क्योंकि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते थे। और वो मुल्क क्या करता है? आज़ादी के लिए खड़ा होता है। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। उसके तीन सफ़ीर 3 साल पहले कत्ल कर दिए गए थे। 3 या 2 साल की बात है। उनको कत्ल कर दिया गया इसलिए क्योंकि उनका मुल्क किस बात की नुमाइंदगी करता है? आज़ादी की, इंसानी हकूक़ की। इंसान को आज़ादी है कि वो अपना फ़ैसला खुद करे, ना कि ग़ुलाम बनाया जाए। सो हम भी जब इंसानों को पैगाम देंगे कि यीशु मसीह आज़ाद करता है, तो बहुत दफ़ा हमारे लिए भी मुश्किल और दुख और तकलीफ़ का सामना होगा। एलची के लिए और बहुत सी बातें हैं। एलची 9वीं आयत, जब जंग होती है तो एलची को वापस बुला लिया जाता है। जब किसी भी मुल्क की जंग आपस में होती है, अगर पाकिस्तान में किसी मुल्क का सफ़ीर मौजूद है, तो जंग होने से पहले उसे वापस बुला लिया जाता है। सो हमें भी कलीसिया के तौर पर वापस बुला लिया जाएगा। हो सकता है मौत के ज़रिया से, लेकिन सबसे ज़्यादा किया आसमानी उस इस्तकबाल के वसीला से, जब कलीसिया उठाई जाएगी। इसके लिए आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं, दूसरा तसलीकियों उसका 2 बाप उसकी 1 आयत से 12वीं आयत तक। वहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं, वहाँ पर क्या लिखा है कि नरसिंगे की आवाज़ से सब कलीसिया हवा में इस्तकबाल उठकर खुदा का करेगी। सो जब जंग होगी, जंग होने से पहले, इसी तरह जब कलीसिया उठाई जाएगी, उससे बाद क्या होगा? ज़मीन पर मुसीबत का दौर आएगा, जिसमें आसमानी कुव्वतें हलाई जाएंगी, जिसमें आसमान से ओले और बहुत सी आफतें जाहिर होंगी। वैसे ही दिन होंगे जैसे मिस्र में वो 10 आफतें आई थी और लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था कि किधर जाएं। वैसी ही आफतें होंगी जैसे सदूम और गमूरा में जब आग की गंधक की झी बारिश बरसाई गई और किसी को रास्ता नहीं मिला, सिर्फ वही ख़ानदान बचा जो खुदा पर तवक्कल करता था। सो हम भी जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, मसीही एलची हैं, जब जंग होगी, जंग होने से पहले हम अपने घर में बुला लिए जाएंगे। सो एलची के बारे में हमें ये 9 बातें मिलती हैं, जो हमने सिर्फ 2 घंटे की जो स्टडी है वो हमने 20 मिनट में देखी है। सो अगर कोई सवाल जवाब हो तो हम इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं। इसलिए आएँ हम खुदावंद अपने खुदा के हजूर झुकें।